विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स की सरकारों ने रेजिडेंशियल टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के लिए रिलीफ पैकेजेस की घोषणा कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं propertify.me के डायरेक्टर अमित सिंह जादौन साहब। अमित सिंह जी, क्या बता सकते हैं हमें, क्या नए बदलाव किए हैं, क्या राहत दी है लैंडलॉर्ड्स को और टेनेंट्स को विक्टोरिया की सरकार ने?
जी जितार जी, देखिए न्यू साउथ वेल्स का जो पैकेज है वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वहाँ पे टेनेंट्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट ने कोई राहत नहीं दी है। उन लोगों ने पैकेज अपना जो इशू किया है वो उन लैंडलॉर्ड्स के लिए है, बेसिकली जिन लोगों ने अपने टेनेंट्स के साथ एक नया एग्रीमेंट नेगोशिएट किया हो और अपने टेनेंट्स को किसी तरीके की रेंट रिलीफ दी हो। तो उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं, जैसे टेनेंट जो है पहले उनको अपना एक नया एग्रीमेंट नेगोशिएट करना है लैंडलॉर्ड के साथ। अगर उनको उसमें कुछ रेंट रिडक्शन मिलता है न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से रिबेट देगी लैंडलॉर्ड्स को उनके लैंड टैक्सेस के लिए। तो लैंड टैक्सेस में करीब करीब 25% तक की रिबेट उनको दी जाएगी और पेमेंट्स भी डिफर किए जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट फाइनेंस इंजेक्शन नहीं है टुवर्ड्स द रेंट्स, लेकिन लैंडलॉर्ड्स को थोड़ी रिलीफ दी जाएगी अगर वो अपना रेंट रिड्यूस करते हैं टेनेंट्स के साथ। तो न्यू साउथ वेल्स का बस इतना ही है सिंपल। जबकि विक्टोरिया का जो है उसमें क्या है, 500 मिलियन का जो पैकेज है उसमें $80 मिलियन जो है स्पेशली ईयर मार्क किए गए हैं ग्रांट्स के लिए, और वो ग्रांट्स उन लोगों को मिलेंगी जिन लोगों ने नए रेंटल एग्रीमेंट नेगोशिएट करके अपना रेंट रिड्यूस कराया है लैंडलॉर्ड से। अब इसमें खास चीजें हैं कुछ कि कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। तो सबसे पहले तो टेनेंट्स को फाइनेंशियल हार्डशिप या रेंटल हार्डशिप होनी चाहिए, और वो किस तरीके से समझी जाएगी कि अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम कम से कम 30% या उससे ज्यादा गिर गई है, उससे ज्यादा की कमी आई है आपकी हाउस होल्ड की इनकम में, और आपके सेविंग्स में $5,000 से कम है, और आपकी जितनी भी टोटल इनकम है उसका एटलीस्ट 30% या उससे ज्यादा आपके रेंट की तरफ जा रहा है, तो वो माना जाएगा कि आप फाइनेंशियल और रेंटल हार्डशिप में हैं। इसके बाद टेनेंट्स को दूसरा स्टेप लेना ये जरूरी है कि वो उनको अपने लैंडलॉर्ड के साथ में नया एग्रीमेंट नेगोशिएट करना है, और अगर वो नया एग्रीमेंट नेगोशिएट होने के बाद किसी तरीके का रेंट रिडक्शन मिलता है उनको, तो आप एलिजिबल बनते हैं इस ग्रांट के लिए। अब वो ग्रांट क्या है, ग्रांट है बेसिकली आपकी करीब $2,000 का पेमेंट जो आपके रेंट की कमी होने की वजह से लैंडलॉर्ड को नुकसान हो रहा है, वो लैंडलॉर्ड को उतने $2,000 तक का पेमेंट दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक खास बात और ये है कि जो ये पेमेंट है ये टेनेंट्स को नहीं मिलेगा, ये दिया जाएगा सीधे आपके लैंडलॉर्ड या एजेंट के अकाउंट में, और जो भी आप रेंट नया पे करेंगे रीनेगोशिएटेड टर्म्स एंड कंडीशंस और रीनेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ये उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। तो मोटा मोटा ये है विक्टोरिया में करीब $2,000 तक की ग्रांट है रेंट रिडक्शन होने के बाद जो कि लैंडलॉर्ड्स को जाएगी, और न्यू साउथ वेल्स में इट इज जस्ट अ रिबेट, 25% तक की रिबेट आपके लैंड टैक्स के ऊपर और डिफर्ड पेमेंट्स। तो ये मोटा मोटा फर्क है दोनों स्टेट्स में।
विक्टोरिया में एक और जो राहत है जिसमें बहुत सारे जो टेम्पररी वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को शायद राहत मिल सकती है कि बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदार के घर में रहने के लिए जाना चाहते हैं, अपना जो किराए का मकान है या किराए का कमरा है उसको छोड़ के, तो इसमें आपको अगर आप वो ब्रेक करते हैं अपनी लीज तो उसमें कोई जुर्माना नहीं लगेगा, आप कर सकते हैं, ऐसी परमिशन भी दी गई है?
जी, तो जिता जी उसमें यह है कि फाइनेंशियल हार्डशिप के चलते आप अपनी लीज ब्रेक कर सकते हैं, और नई लॉज में आपको ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि लीज ब्रेक करने की वजह से जो एक्स्ट्रा फीस जनरली लोगों को देनी पड़ती है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, और कोई लैंडलॉर्ड आपको लीज ब्रेक करने की वजह से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता इन कंडीशंस में, ये प्रोटेक्शन लोगों को मिला है इसके साथ।
अगर वो रहना चाहता है और रेंट नहीं दे पा रहा है तो ये जो किराया में जो कमी है वो उसे बाद में देनी पड़ेगी या वो खत्म हो जाती है?
नहीं, खत्म तो नहीं होती, आप किराया अपना कम करा लें और जो भी आपकी देनदारी बनती है आप ये बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लाइबिलिटी आपके ऊपर बनी रहेगी। अब वो आपको कब देनी है, इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, पीरियोडिकली देंगे, बाद में इकट्ठा देंगे, ये सारी चीजें जो है ये नेगोशिएशन की है कि आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में क्या डिसाइड हुआ है। किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए अगर डिसाइड होता है कि पर वीक हम इतना दे देंगे आपको या 2 महीने बाद हम इतना दे देंगे और आप फिर भी नहीं दे पाते हैं, तो भी वो लाइबिलिटी वहां पे रहती है, वो आपको अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा।
और कुछ कंडीशंस इसमें ये भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये जो 6 महीने का समय है जहां आपको घर से नहीं निकाला जा सकता, उसमें निकाला भी जा सकता है, वो दो कंडीशंस क्या होंगी?
तो ऐसा है जितार जी कि देखिए जो प्रोटेक्शन है नई लॉज के अकॉर्डिंग वो सिर्फ इसलिए है कि आपको एविक्ट इसलिए ना किया जा सके कि आप रेंट नहीं दे पा रहे हैं। उसके अलावा सारी चीजें, अगर आप कुछ भी गलत करते हैं जैसे तोड़फोड़ करते हैं घर में या आप कुछ इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो आपको ये प्रोटेक्ट नहीं करती प्लीज, आपको उसके उसके चलते आपको फिर भी घर से एविक्ट किया जा सकता है।
हमें जी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।